તારીખ 20/2/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 469
મનુષ્ય દેહ મે આત્મકલ્યાણ કા યોગ બનતા હૈ અન્ય દેહ મે अन्य गति में आत्मकल्याण का योग प्राय नहीं बनता है, बहुत करके नहीं बनता है। आत्मकल्याण का योग को आत्म योग ऐसा संक्षेप में लिखा है, आत्मकल्याण का योग उसको संक्षेप में लिखा है आत्मयोग। आत्म प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न हुए उसे आत्मयोग कहने में आता है। तो ऐसा मनुष्य देह विद्यमान है उन लोगों को, इसलिए कहते हैं कि अत्यंत निश्चय करके, निर्धार करके, यही देह में ये देह विलय होने के पहले पहले ऐसा आत्मयोग उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निर्धार करने से ऐसी योग्यता की प्राप्ति होती है। ऐसा कार्य वहाँ तक नहीं बनता जहाँ तक जीव निर्धार नहीं करता। अगर वो दृढ़ निश्चय करता है तो अवश्य अवश्य उनको आत्मयोग की प्राप्ति होती है। फिर भी शीघ्रपणे अभी ही अभी आत्मयोग कैसे प्रकटे, इस विषय में भी यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है। लिखते हैं आगे कि विचार की निर्मलता से यदि यह जीव अन्य परिचय से पीछे जाए तो सहज में अभी ही उसको आत्मयोग प्रकट होता है। क्या कहा, बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। विचार की निर्मलता से मतलब क्या है, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मैंने निर्मलता, निर्मलता मैंने शुद्ध। अगर हमारा अंतःकरण की शुद्धता है कि हमें आत्मकल्याण करना ही है, तो उस जीव क्या करेगा, उसके परिणाम कैसे रहेंगे कि अन्य परिचय से मैंने अन्य पदार्थ में और अन्य भाव में उनका जो रस है वो रस कम हो जाएगा। उसको कहते हैं कि पाछा उड़े, पीछे जाना मतलब क्या कि निरस हो जाना। क्या कारण से निरस हो जाना, कि तीव्र आत्मकल्याण के विचार से यानी शुद्ध अंतकरण पूर्वक उत्पन्न हुआ आत्मकल्याण के विचार से अगर जीव का अन्य द्रव्य और अन्य भाव में रस कम होता है तो सहज कृत्रिमता नहीं करनी पड़े, सहज रूप से वर्तमान में ही, हमणा मैंने वर्तमान में ही आत्मयोग प्रकट हो, आत्मयोग प्रकट हो जाएगा, मैंने योग्यता की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल है, यदि हमारे आत्मकल्याण में ही शुद्ध अंतकरण की परिस्थिति नहीं है तो हमको हमारा आत्मकल्याण वास्तव में ईमानदारी से तो नहीं करना है, हमारे आत्मकल्याण में हमारी प्रामाणिकता नहीं है तो फिर हमारे जीवन में अन्य व्यवहार में प्रामाणिकता रहेगी इसका भरोसा कैसे किया जाए? नहीं कर सकते। जब हम हमारे आत्मकल्याण के विषय में ही प्रामाणिक नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर हम दूसरे कौन से प्रसंग में प्रामाणिक रह सकते हैं? जगत में भी प्रामाणिक व्यवहार एक सद्गुण माना गया है और जो प्रामाणिकता से अपना जीवन गुजारता है, भले ही वो निर्धन हो तो भी वो समझेगा कि हमारी निर्धनता वही हमारा गौरव है। कोई सधनता यानी श्रीमंता ही कोई सद्गुण तो नहीं है और निर्धनता कोई अवगुण तो नहीं है। इसका बहुत अच्छा एक दृष्टांत हमारे यहाँ बना है। लाल बहादुर शास्त्री का जब देहावसान हो गया तो इसकी संपत्ति क्या थी वो बात बाहर आई तो उसके पास बिल्कुल संपत्ति नहीं थी। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक गरीब आदमी था पर वही इसका गौरव था। तो अगर हम हमारे आत्मकल्याण में सावधान हो जाए और आत्मकल्याण की सावधानी के कारण से हमारी सावधानी हमारे व्यवसाय आदि में कम हो जाए और पूर्व कर्म के योग से निर्धनता भी आ जाए, सावधानी के कारण से नहीं या बेसावधानी के कारण से नहीं, वो पूर्व कर्म के अधीन है, तो ये हमारा गौरव होगा, ये निर्धनता भी हमारा गौरव होगा। इसी को कहते हैं सच्ची व्यवहारिक प्रामाणिकता। अगर उतनी प्रामाणिकता हमारे आत्मकल्याण के विषय में आ जाए, यही आशय से ये शब्द प्रयोग किया है कि विचार की निर्मलता से, निर्मल विचार से, शुद्ध विचार से, शुद्ध अंतकरण से, यदि यह जीव अन्य परिचय नहीं करे, अन्य पदार्थ में, अन्य प्रसंग में, असत प्रसंग में रस नहीं ले तो उनको आत्मकल्याण की योग्यता प्राप्त होना सहज है और शीघ्र ही उसको वर्तमान में ही उसी समय में ही उसको इस योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। योग्यता की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती और इसके लिए इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। क्या होता है कि धर्म ने धर्म के क्षेत्र में जीव बाह्य वस्तु का त्याग बहुत जल्दी से कर सकता है। चलो आज नहीं खाएंगे, आज उपवास करना है, लेकिन खाने की चीज में रस निरस हो जाए वो बात कठिन पड़ती है। रस छोड़ना कठिन पड़ता है, वस्तु छोड़ना इतनी कठिन नहीं पड़ती, ये गड़बड़ है। पदार्थ के त्याग की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता रस परित्याग की होती है। तो ऐसा होने से योग्यता वर्तमान में ही प्रकट होती है। असत प्रसंग का घेराव विशेष है। एक सत्संग को छोड़ करके और सत्संग प्रसंग का और सत्संग के ही सब प्रसंग है, सत्संग को छोड़ दें तो सभी प्रसंग असत्संग के ही है, वो विशेष है, ज्यादा है। और इस घेरावा में घिरा हुआ यह जीव अनादि काल से हीन सत्व हो गया है। हीन सत्व हो गया है माने निर्बल हो गया है, मुमुक्षु की शिकायत क्या है अधिकतर कि आत्मकल्याण तो करते हैं लेकिन हमारा बल नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, लगातार वो बात चालू नहीं रहती है, छूट जाती है। क्या कारण है कि अनादि काल से वो कमजोर हो गया है। हीन सत्व माने क्या कि अनादि काल से अन्य परिचय में इतना रस लिया है कि कमजोरी बहुत आ गई है। ये कमजोरी के वशात उसका पुरुषार्थ नहीं चलता है, वो बात सही है, वो हकीकत है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, हो चुकी है। इसलिए उस कमजोरी को कम करने के लिए इससे अवकाश प्राप्त करना, मैंने उसमें जगह होना, कमजोरी में जगह होना, मैंने बल आना है आहिस्ते आहिस्ते, अथवा उसकी निवृत्ति करना है, इस कमजोरी को मिटा देना, उस करने के लिए जैसे हो सके वैसे सत्संग का आश्रय करे। क्या उपाय है इसका, बल लाने का क्या उपाय है, सत्संग का आश्रय करना। सत्संग करना ऐसा नहीं कहा है, सत्संग का आश्रय करना, आधार लेना। जैसे हमने हमारे अन्य संयोग का आधार लेकर के उस आधार बुद्धि से हमारे परिणाम चलते हैं, अब ये आधार बुद्धि को एक्सचेंज कर देना है। अन्य प्रकार के संयोग में आधार बुद्धि है, अब सत्संग की आधार बुद्धि हो जानी चाहिए। आश्रय करना, सत्संग करना उतना नहीं लिखा है, सत्संग का आश्रय करना ऐसा लिखा है। आगे भी ऐसा ही बात किया था। हाँ, आश्रय करना माने क्या, प्रश्न वो है, विशेष रूप से क्या समझे उसमें, कि हमारा आत्मकल्याण बिना सत्संग होगा नहीं, ऐसे आश्रय बुद्धि आ जानी चाहिए। इसलिए देह त्याग करने का प्रसंग आ जाए तो भी, छोटी मोटी बात को तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है तो उसको स्वीकार कर लेना, लेकिन सत्संग को गौण करना योग्य नहीं है। ये बात उन्होंने 609 नंबर के पत्र में कही है। 609 को देखें, कृपाल देव के शब्द में ही ये बात आई है। प्रश्न संख्या 470 ऊपर के पैराग्राफ में है, तो चौथी पंक्ति है। तो उस सत्संग के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो यह स्वीकार कर लेना, परंतु इससे कोई पदार्थ में विशेष मैंने अधिक भक्ति स्नेह मैंने राग वजन प्रेम प्रीति रुचि होने देना योग्य नहीं है। ये बात लिखी है, इतना महत्व अगर आता है जिसको और इसका आत्मकल्याण नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं बनता, ऐसा कभी बनता ही नहीं। उतनी तैयारी अभिप्राय की भूमिका में आ जानी चाहिए। जहां तक ऐसा निर्धार नहीं होता है वहां तक सत्संग का आश्रय नहीं होता है। सत्संग होता है, सत्संग का आश्रय नहीं होता है। तो ये सत्संग होता है वो ऊपर ऊपर से होता है, ऊपर ऊपर से सत्संग तो अनंत बार किया भी है, लेकिन ये सत्संग प्राप्त होने पर भी अप्राप्त हो गया हो ऐसी परिस्थिति में ही यह प्रसंग का विसर्जन हो जाता है, यानी ये प्रसंग का उदय समाप्त हो जाता है, वो भी एक उदय है। जीव के शुभ कर्म का ये उदय है जिससे उनको सत्संग की प्राप्ति होती है, वा भी करती है। परंतु जहाँ तक जीव ऊपर ऊपर से सत्संग करता है, आश्रय बुद्धि से नहीं करता है, तो प्राप्त होने पर भी अप्राप्त हो ऐसी परिस्थिति में ही इस प्रकार के उदय की समाप्ति हो जाती है। आश्रय बुद्धि से होने वाला सत्संग कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि देह त्याग करने का प्रसंग को जीव स्वीकार करता है लेकिन सत्संग को ग्रहण करता नहीं है। जो बात 609 में कही वही इस प्रश्न का समाधान है। देह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अभिप्राय में हमारी उतनी तैयारी है या नहीं उसको चेक कर लेना चाहिए, यानी हम कहाँ कहाँ सत्संग को गौण करते हैं और अन्य प्रसंग को मुख्य करते हैं वो हमको देख लेना चाहिए और हमारी तैयारी कितनी है वो देख लेना चाहिए। अगर हमको सत्संग में रुकावट आ जाए तो क्या हम अनशन कर सकते हैं? कोई ऐसी परिस्थिति या बलात्कार हमारे पर हो जाए कि सत्संग से वंचित रखा जाए तो क्या हम अनशन कर सकते हैं? क्या अपने भीतर में अपने मानसिक भूमिका को चेक कर लेना, अगर हमारी उतनी तैयारी है तो कुदरत बंधी हुई है, कुदरत झुकती है ऐसी बलवान विचार शक्ति के आगे, कुदरत भी झुकती है और उसको सत्संग अवश्य मिलता ही है। लेकिन होनी चाहिए अपनी तैयारी, अपनी तैयारी नहीं है तो हम कमजोर हैं। बलवान को सब साथ देते हैं, संसार में भी कमजोर को कोई साथ नहीं देगा कि उनके में उसमें बल नहीं है, हम साथ रहेंगे तो हम मर जाएंगे, वो तो ढीला पड़ जाएगा, और बलवान होता है तो इसके पीछे सब साथ देने वाले मिल जाते हैं। ऐसे अगर हम आत्मविचार में आत्मकल्याण के निर्धार में बलवान बलवान है तो ये कुदरत भी हमारी गुलाम है, तो कुदरत हमारे से विरुद्ध नहीं चल सकती। तो मुझे बेंसरे ने क्या लिखा कि अंतर से उत्पन्न हुई भावना, चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना, आत्मा में से उत्पन्न हुई आत्मकल्याण की भावना अवश्य अवश्य सफल होती ही है। 21 नंबर का वचन है, अगर ये भावना सफल नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। 14 ब्रह्मांड मैंने सारा विश्व की कुदरत है, वो उसको शून्य हो जाना पड़े, उतनी ताकत एक जीव की एक भावना में होती है, एक भावना के परिणाम में उतनी ताकत है जितनी ताकत 14 ब्रह्मांड का अस्तित्व की नहीं है। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन रखा है, एक परमाणु का अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। क्या एक परमाणु है ना छोटे से छोटा, इसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता, अनंत अस्तित्व शक्ति से वो मौजूद रहता है, अनादि अनंत। तो चौथ ब्रह्मांड में तो अनंत अनंत परमाणु, अनंत अनंत जीव, असंख्य कालाणु, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय और लोकाकाश, छह द्रव्य है। सबको शून्य होना पड़े अगर भावना निष्फल जाए तो। मतलब कि भावना, सही भावना, सच्ची भावना, चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना कभी निष्फल जाती नहीं। विश्वास होना चाहिए इस बात का, हमको विश्वास होना चाहिए। इसलिए ऐसे निर्बलता को मिटाने के लिए सत्संग का आश्रय करें तो कोई रीति से या किसी भी प्रकार से जीव पुरुषार्थ योग्य होकर के विचार दशा को प्राप्त होता है। जीव पुरुषार्थ के पुरुषार्थवान बलवान होकर के आत्मकल्याण की सबल बलवान विचार दशा को प्राप्त होता है। और ऐसा आत्मविचार उत्पन्न करने के लिए और क्या करना, सत्संग का आश्रय तो करना, और जब सत्संग उपलब्ध नहीं हो तो क्या करना, किस प्रकार के विचार चलने चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन दिया है इधर। कि जिस प्रकार से अनित्यपणा असारपणा इस संसार का अत्यंत रूप से भाषित हो, यह प्रकार करके यह प्रकार से आत्मविचार उत्पन्न होता है। आत्मकल्याण का विचार उत्पन्न होने में ये एक खास बात है कि जिस संसार में हम प्रवृत्ति करते हैं, मानो इस पर ऐसे परिणाम से प्रवृत्ति करते हैं कि जैसे हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, कायम रहने वाले हैं, ऐसा ही भाव में आकर के हम हमारी प्रवृत्ति को हमेशा चालू रखते हैं, जोर से प्रवृत्ति करते हैं, रस से प्रवृत्ति करते हैं। तो कहते हैं कि उसका अनित्यपणा का विस्मरण होना नहीं चाहिए। ये संसार है वो अनित्य है, समय समय पर हर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता ही रहता है। एक परमाणु और एक जीव को अवस्था से अवस्थांतर करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, परिणमन को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए ये पूरा संसार अनित्य है, कभी कायम रहने वाला नहीं है। चाहे लाख प्रयास करें, लाख उपाय करें, अनित्यता है वो वस्तु का स्वरूप है। जिस प्रकार से अनित्यपणा और असारपणा, सार मैंने सुख और असार मैंने दुख, संसार अनित्य भी है और दुखमय भी है, किसी को सुख नहीं है संसार में। एक भी ऐसा जीव ले लो कि किसी को उलझन नहीं हो, टेंशन नहीं हो, तनाव नहीं हो, ऐसा एक जीव ले लो, कोई जीव नहीं मिलेगा संसार में, कोई जीव नहीं है। इस संसार का अनित्यपणा और असारपणा अत्यंत भासे, ऊपर ऊपर से लगे नहीं, अत्यंत लग जाए तो एक बात तो ये हो जाएगी कि हमारी दौड़ है ये दौड़ छूट जाएगी। ये करना, वो करना, इसके पीछे वो करना, इसके बाद वो करना, आगे जाके वो करना, ये करना है, वो करना है, उतने दौड़ है या उतने असत असत प्रसंग के घेरावे में हम दौड़ते हैं वो तो एकदम टूट जाएगी बात, अत्यंत लगे तो, ऊपर ऊपर से लगे तो नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से तो स्वाध्याय करते तब लगता है, और स्वाध्याय पूरा होने के बाद ये बात छूट जाती है। यानी सामने उदय आ जाता है, अनेक प्रकार के कार्य के प्रसंग आ जाते हैं, और वो जरूरी है ऐसा लगता है, और हमारा फर्ज है, ड्यूटी है ऐसा लगता है, तब ये सब बात विस्मरण हो जाती है कि संसार अनित्य है और असार है, ये बात छूट जाती है। तो अत्यंत लगने से नहीं छूटेगा, लगना इतना नहीं लिया है, अत्यंत भाषित होना, भाषित होना मैंने लगना, फील होना, विचार की भूमिका में से आगे बढ़ करके लगने की भूमिका में आना चाहिए मुमुक्षु को, फीलिंग पोजीशन में। थिंकिंग पोजीशन में तो बौद्धिक स्तर पर बहुत थिंकिंग चलता है लोगों को, उसको कहते हैं हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन लगता है क्या? लगने को भाषण कहते हैं, भाषित होना कहते हैं, और वो स्थिति में आना चाहिए। जहाँ तक वो स्थिति में नहीं आता है, वहां तक विरुद्ध भाषण, विरुद्ध लगना चालू है, और ये बलवान है। विचार से भी फीलिंग ज्यादा बलवान है, थिंकिंग से फीलिंग ज्यादा बलवान है, इसलिए ये परिस्थिति में आना चाहिए, इसलिए यहाँ भाषित होना ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार से अनित्यपणा असारपणा यह संसार का अत्यंत रूप से भाषित हो, अत्यंत रूप से लगे, उस प्रकार से आत्मविचार की उत्पत्ति होती है। यानी आत्मकल्याण का यथार्थ विचार तब उत्पन्न होता है, इसके पहले आत्मकल्याण का यथार्थ विचार नहीं है। इसलिए एक प्रश्न और पूछा जाए कि आत्मकल्याण का विचार है आपको, तो कहें तो सही है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं, वरना बहुत काम है हमको भी, लेकिन इस काम को गौण करके भी घंटा भर बैठ जाते हैं, तो आत्मकल्याण का विचार है तब तो बैठते हैं। अब उनको पूछते हैं कि आत्मकल्याण का विचार है, उसका एक दूसरा पहलू है कि संसार की अनित्यता, असारता, अशरणता, एक और शब्द भी लिए लेते हैं कृपाल देव, 810 में लिया है, 810 देखो, प्रश्न संख्या 613। जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरण रूप है, कितनी भी दौड़ लगाओ, उस शरण देने वाला नहीं, माने रक्षण करने वाला नहीं। राजा हो, महाराजा हो, शहंशाह हो, लेकिन इसका भी कोई रक्षण करने वाला नहीं है। अभी राजा महाराजा नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान का या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, राजमार्ग पर गोली चलाई जाती है, कैनेडी का हत्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसके संरक्षण दल कम होगा हिंदुस्तान से? और सबों का हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ भी होता है कि नहीं होता है, अपने घर में इंदिरा को मारा कि नहीं मारा, कौन रक्षण कर सकता है? हर बाजार में अमेरिका तो, उसका तो जो संरक्षण है वह तगड़ा होता है। शरीर की लाल बूंदी या चनोटी आती है ना, ऐसी तंदुरुस्ती हो और खाते खाते चले जाए, ऐसे हाथ में या मुंह में लड्डू रह जाए और चले जाता है, कोई शरण में नहीं आ सकता, कोई रक्षण नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति भी इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होती है? जो अनित्य है, असार है, अशरण रूप है, फिर भी इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होता है? यह बात रात्रि दिवस विचार करने योग्य है, निरंतर विचार करने योग्य है। यहां से आत्मकल्याण के विचार की सही उत्पत्ति होगी, यथार्थ आत्मकल्याण का विचार इस पहलू से होता है। जहां तक संसार की अनित्यता लगती नहीं, अशरणता लगती नहीं, असारता लगती नहीं, वहां तक आत्मविचार अविचार के बराबर ही होता है। जब आत्मकल्याण का विचार बेकार जाता है, भी कारण से बेकार जाता है, निष्फल जाता है, इसलिए इसका यथार्थ बना दिखाया है यहां। अब अपने ही विषय में लिखते हैं, गोपाल देव के वचनामृत में बहुत विशिष्ट कोई बात है तो यह है कि सिर्फ वो दूसरे को मुमुक्षु को उपदेश ही देते थे ऐसा नहीं था, वो अपनी बात भी किया करते थे कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए अपने परिणाम दिखाने का। ये तो लिख के दिया है, बोलने में तो फिर बदल जाता है आदमी, ऐसा नहीं बोला था ऐसा बोला था, लेकिन ये तो लिखते हैं वो तो कांटा का पै जाए, तो डॉक्यूमेंट्स हो जाता है वो, तो वो लिख के दिया है। कितनी सरलता होगी जब अपने परिणाम को लिख सकते हैं, और कितनी निरभिमानता होगी कि अपने चलते हुए परिणाम को, उदय के परिणाम को भी बुद्धि खाते हैं, उदय के परिणाम तो दोषित होते हैं तो अपने दोष को भी दिखाते हैं। गुरु के पास तो शिष्य अपना दोष का निवेदन करे, लेकिन ज्ञानी मुमुक्षु के पास अपना दोष का भी प्रसिद्ध करता है, निवेदन करता है, तो कितनी बेहद निरभिमानता है, कितनी बेहद सरलता है, और जिसको लिखते हैं इसके प्रति कितनी आत्मीयता है। ये मुड़ी होती है ना पूंजी, कोई किसी को बताते नहीं, चाहे कोई करोड़पति माने चाहे कोई भिखारी माने, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि मेरी इतनी संपत्ति है, लेकिन किसको कहेगा, कि अपने पुत्र को कहेगा, वो भी मैच्योर होने के बाद, मैच्योर होता तो उनको भी नहीं बोलेगा कि भी बड़ा होने दो, थोड़ा मैच्योरिटी आने दो, तभी उनको बताएंगे कि अपने पास उतना है, अपने को सोच समझ करके खर्चा करना है, सोच समझ करके काम धंधा करना है, अपने पास तो उतनी बात है, लेकिन दूसरे को तो नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या कि आत्मीयता होती है तब ये अपनी निजी बात होती है। तो जिन मुमुक्षों के साथ कृपालु देव का पत्र व्यवहार चला, कि पत्र व्यवहार नहीं था, पत्र व्यवहार के माध्यम से सत्संग चलता था, क्या चलता था, पत्र व्यवहार इस प्रकार से करना ये परोक्ष सत्संग की विधि है, और प्रत्यक्ष रूबरू में बातचीत करना वो प्रत्यक्ष सत्संग की कार्य पद्धति है। ये सत्संग चलता था, और सत्संग में वो अपने दोष का निवेदन भी करते थे, अपने आत्मपरिणति का भी निवेदन करते थे। आत्मपरिणति तो एक संपत्ति है, ये ज्ञानी की संपत्ति होती है, वो कौन किसको बताता है अपनी संपत्ति, कि जिसके साथ आत्मीयता होती है उसको दिखाते हैं, दूसरे को कोई दिखाते नहीं थे। ऐसा सत्संग आपस में चलता था। ये सुभाग भाई के प्रति लिखा हुआ पत्र है, और खास करके सुभाग भाई के पत्र में अपनी दशा का निवेदन बहुत आया है, और खास करके ज्ञान दशा का, अपने ज्ञान धारा का। तो भी विशेष रूप से ये तो लिखना भी इतना सामर्थ हो तो लिख सके, क्योंकि अरूपी पदार्थ के अरूपी परिणाम हैं और अनुभव के परिणाम हैं। अनुभव को कलम में ले आना, कागज पे ले आना, ये कोई आसान बात नहीं है। फिर भी वो उतने समर्थ थे कि वो पत्र में इस बात को प्रसिद्ध करते थे, लिख सकते थे, बता सकते थे। और उसमें से बहुत बहुत प्रकार के ज्ञान दशा के जो गुण होते हैं, उस गुण का दर्शन होता है। इस विषय पर एक विवेचन लिखा है कृपाल गुरुदेव के, ज्ञान दशा पर जो विवेचन लिखा है, इसका एक छोटा सा ग्रंथ यहाँ उपलब्ध है। धन्य आराधना, कृपालु देव की आराधक दशा, कितने कितने प्रकार की विशिष्टता संयुक्त थी, और उसका कितना बहुमान होना चाहिए, आना चाहिए, यही दृष्टिकोण से इस दशा पर थोड़ा विवेचन करके एक छोटा सा ग्रंथ बना है, धन्य आराधना करके। वो तो यहाँ से किसी को भी चाहिए ले सकते हैं, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मुमुक्षु ने एडवांस में वो पैसे दे रखे हैं कि जिसको चाहिए उसको दे देना है। ये ग्रंथ है इधर, वो ग्रंथ पर कृपाल देव का फोटो भी है, टेबल पर रखा हुआ है। तो सारे ग्रंथ में जिन जिन पत्रों में उन्होंने अपनी दशा का निवेदन किया है, आराधक दशा का, ज्ञान दशा का, उसमें कितने कितने पहलू है और उसमें क्या क्या बात गर्भित है और उसमें कितने गुण हैं, और उसको समझने से ज्ञानी के प्रति भक्ति विशेष होती है, यही दृष्टिकोण इस विवेचन के पीछे रखा गया है। यहाँ पर तो अपने उदय भाव की चर्चा दो पंक्ति में किया है कि अब यह उपाधि कार्य से छूटने के लिए विशेष विशेष आर्थ परिणाम हुआ करता है। वो व्यवसाय में थे, 20 साल की उम्र से वो व्यवसाय में जुड़े हुए थे, और व्यवसाय में प्रवेश करते ही उनका वैराग्य बढ़ने लगा, व्यवसाय में निरस्ता बढ़ने लगी। सामान्य संसारी जीव की हालत ये होती है कि वो बाजार में प्रवेश करता है, कॉमर्शियल फील्ड में आता है, पैसा कमाने की प्रवृत्ति शुरू करता है और पैसा कमाने का चालू होता है। जैसे जैसे पैसे की कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे पैसा का रस भी बढ़ जाता है। देख लीजिए आप कि ज़्यादा कमाई हुई तो ज़्यादा रस आया कि नहीं आया, कि आए बिना रहेगा नहीं। जबकि ये लोकोत्तर महात्मा थे, लौकिक मनुष्य नहीं थे वो, कि लोकोत्तर महात्मा थे, तो परिस्थिति वश, अपने परिवार की परिस्थिति वश उन्होंने व्यवसाय तो चालू किया 20 साल की उम्र में, और चालू होते ही जैसे जैसे वो सफल होते गए वो निरस होते गए। यही निरसता के कारण से 24 साल की उम्र में 23 साल पूरा हुआ, 3 साल पूरा हुआ नहीं हुआ, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। जैसे व्यवसाय करते करते सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए, ऐसे मोटे मोटे स्थूल रूप से बोला जाता है। वास्तव में व्यवसाय से नीरस होते होते वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए थे, ये अंदर की बात है, सूक्ष्म बात है। स्थूल बात वो है कि वो व्यवसाय करते करते, व्यवसाय क्या, वो 20 साल की उम्र में व्यवसाय करने के बाद तो शादी किया है, बाद में उनका शादी हुआ, लग्न प्रसंग बाद में आया, फिर भी वो अपने जीवन में उदय के प्रसंगों में, उदय के परिणामों में हमेशा हमेशा निरस्ता में आगे बढ़ते गए हैं। तो 28 साल की उम्र में तो कहते हैं कि अब तो हमारे परिणाम में आकुलता हो रही है। आरती के परिणाम मतलब क्या? आकुलता के परिणाम, छूटने के लिए आकुलता हो रही है कि ये व्यवसाय कैसे छोड़े। 28 साल की उम्र आजकल तो पूरी जवान उम्र बोली जाती है, 28 साल का लड़का घर में देख लीजिए, हाँ वो 24 साल 23 साल की उम्र से तो बहुत निरस्ता बढ़ गई, बहुत उदासीनता आ गई, 5 साल में तो आकुलता बढ़ गई, 28 साल की उम्र है ये पत्र लिखते हैं तब तो, 35 साल की उम्र में तो व्यवसाय प्राय छोड़ दिया है। 28 साल की उम्र में वो डॉक्टर भगवान दास है, उसने अध्यात्म राजचंद्र लिखा है, उन्होंने कृपालु देव का इतिहास अच्छा लिखा है। तो 28 साल की उम्र में तो एक दफे भागीदार जो थे उन लोगों को बोल दिया कि अब तो हमको छोड़ दो, हमें हमारी पार्टनरशिप बंद कर दो, हमें गुडविल भी नहीं चाहिए। क्या आजकल तो गुडविल का सवाल पैदा होता है, जो धंधा अच्छा चलता है उसका, हमको गुडविल भी नहीं चाहिए, हमको मुक्त कर दो, हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो बोले कि नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आप जैसे को कैसे छोड़ें, ठीक हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, क्या करें, अब तो हमारा उपयोग लगना मुश्किल हो गया है, इसका क्या करें। तो ठीक है, अब जितना हुए उतना करो, ज्यादा मत करो, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, और 2 साल ज्यादा तो चालू रहे। 30 साल की उम्र में तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी गड़बड़ चालू हो गई, तो ववाणी आकर के चिट्ठी लिख दी कि मेरी भागीदारी बंद कर देना और मेरे खाते में जितनी कमाई बची है, जमा रकम जिसको बोलते हैं, हाँ वो मेरे छोटे भाई के खाते में जमा कर देना, मेरा अकाउंट क्लोज कर देना, ऐसा करके चिट्ठी लिख दिया। फिर भी उन लोग को बहुत लगाव रहा, तो स्वास्थ्य के कारण से भी उतनी उपस्थिति नहीं रहती थी, करीब करीब वो फिर मुंबई छोड़ के रहे हैं, कभी निवृत्ति क्षेत्र में, कभी ववाणिया में, कभी मोरबी में, ऐसे ज़्यादा समय उसमें गए हैं, कभी कभी मुंबई गए हैं, तो इलाज के कारण से भी गए हैं, लेकिन 30 साल की उम्र से तो बिल्कुल प्रवृत्ति छोड़ दी, ऐसा हो गया। तो आजकल 30 साल की उम्र में कौन व्यवसाय छोड़ेगा, 40 साल की उम्र तो छोटी की नहीं जाती है, कभी निवृत्ति का थोड़ा उम्र होती है, ये उम्र निवृत्ति की थोड़ी होती है, 40-50 तक को तो ये विचार आना ये जमाने में मुश्किल है, और कई लोग तो 60-70 साल तक भी छोड़ सकते नहीं है। तो फिर आत्मकल्याण कैसे होगा जब हमारा रस ही नहीं छूटता है, और सत्संग के प्रसंग पर हमारा रस जमा हुआ रहता है, और ऊपर ऊपर से हम स्वाध्याय सत्संग आदि करें या कुछ भी करें तो उसका असर कहाँ से टिकेगा, और आत्मकल्याण का विचार बल कहाँ से उत्पन्न होगा, ये हो सकने वाला नहीं है। ये तो बात हुई भाई लोगों की, बहनों को अपने अपने उदय का विचार कर लेना, जिसको जिस प्रकार का उदय हो यहाँ से रस लेना छोड़ देना चाहिए। अपनत्व, रस तो क्या होता है, अपनत्व रहता है घर में, घर के जो भी चीज वस्तुएं होती है, गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, परिवार होते हैं, जो भी होता है उसमें अपनत्व रहता है, वहाँ पूरा रसमा जमा रहता है। तो यही उनके लिए यही संसार है, जहाँ अपनत्व रहा वही संसार है, और तो कोई संसार नहीं है। संसार कहाँ रहता है कि जीव के अन्य पदार्थ में अपनापन है, वहाँ संसार है। चाहे वो एक फटी हुई गुदड़ी हो या चाहे कोई महल हो, वहाँ संसार है। जहाँ अपनत्व हुआ वहाँ कहते हैं कि अब तो इस उपाधि कार्य से छूटने की विशेष विशेष आरती हुआ करती है, और छूटे बिना जो कोई भी काल यानी समय जाता है वह इस जीव का यानी हमारे जीव का शिथिल पना ही है, ऐसा लगता है, यानी ऐसा निश्चय रहता है। अपनी शिथिलता लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। देखो, समर्थ ज्ञानी पुरुष है लेकिन व्यवसाय चालू रहता है और उसमें समय देना पड़ता है, उसमें उपयोग देना पड़ता है, वो कितना खटकता है, लगता है कि ये हमारी शिथिलता ही है। अगर हमारे परिणाम बलवान होते तो वैसे ही छूट जाता, ऐसा लगता है, ऐसा निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, ऐसी ज्ञान दशा में ऐसा निर्णय करते हैं और ऐसे परिणाम होता हो जाता है। तो जिसकी ज्ञान दशा नहीं है उसकी हालत क्या हो जाए? अपने परिणाम के रस का नाप जीव को आना मुश्किल है कि हम कितने रस से, कितने आवेग से हमारे उदय के कार्य में लगे हुए रहते हैं, इसका अंदाज निकालना भी बहुत मुश्किल है। और ये स्थूल नास्ति के परिणाम है, उसका भी सही नाप नहीं है हमारे ज्ञान में, तो हमारा आत्म स्वभाव का सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसा जो आत्म स्वभाव है वो आत्म स्वभाव ज्ञान में कैसे आ सकता है, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? आत्मज्ञान तो आत्म स्वभाव का ग्रहण होने से होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब स्थूल भाव भी ग्रहण नहीं होता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव कैसे आएगा? तो आत्मज्ञान कितना दूर है उसका पता चल जाएगा। अब एक और बात कहते हैं कि जनक आदि उपाधि में रहे थे फिर भी आत्म स्वभाव में बसते थे, रहते थे, ऐसा आलम्बन के प्रति कभी भी बुद्धि नहीं होती। क्या कहते हैं? हमको मालूम है कि ऐसे भी महात्मा हो गए, समर्थ ज्ञानी हो गए, कि जो राजकाज में बसते थे, रहते थे, फिर भी वो अपने आत्म अवस्था से बिल्कुल शिथिलता में नहीं आते थे, आत्म अवस्था की शिथिलता उनको नहीं आती थी। वो रामचंद्र जी के ससुर थे, पिताजी के पिताजी थे, जनक विदेही बोलने में आते हैं। आज भी वहाँ उनका नाम जनक विदेही है। क्या क्या उनकी ज्ञान दशा उतनी देहातीत थी? क्या वो सब जैनी थे? आज वो वैष्णव संप्रदाय के पुराण में प्रसिद्ध महात्मा है और वहाँ भी जनक विदेही के नाम से प्रसिद्ध है। वो विदेही शब्द का वहाँ प्रयोग है लेकिन वो उतना जानते नहीं है आजकल, वो विषय वहाँ प्रचलित नहीं है कि विदेही क्या। लेकिन देह होने पर भी देह रहित दशा का अनुभव रहना, उसको विदेही दशा कहने में आती है। देह सता जैनी दशा मरते देहातीत, देहातीत दशा का अनुभव था, प्रबल अनुभव रहता था। थे तो बड़े राजा और राजकाज भी में वो दिखते थे, लेकिन वो विदेही अवस्था में रहते थे, देहातीत अवस्था में रहते थे, राजकाज में तो नहीं रहते थे, देह में भी नहीं रहते थे, देहातीत अवस्था में रहते थे। तो हम भी रह सकते हैं, जब जनक राजा रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं, ऐसा आलंबन लेने का हमारा अभिप्राय कभी होता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी होते हैं या यथार्थ मुमुक्षु होता है उनको ऐसा आलंबन नहीं आता कि अपनी शिथिलता का पोषण हो जाए, अपनी शिथिलता की पुष्टि हो जाए, ऐसा आलंबन नहीं आता। शास्त्र में खास करके कथानुयोग के पुराण के शास्त्र में ऐसी बातें आती हैं, ये जीव की शिथिलता की पुष्टि करने के लिए नहीं लिखी, आचार्यों ने लिखी है। हमारे जो रामचंद्र जी की कथा है, रामायण जिसको बोले, जैन रामायण, ये पद्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है और रविशेण आचार्य ने वो लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, भावलिंगी संत ने लिखी है। उसका नाम पद्म पुराण इसलिए लिखा कि रामचंद्र जी के बचपन का नाम पद्म कुमार था, बचपन में उसका नाम रखा गया था पद्म कुमार, और पद्म कुमार भी इसलिए नाम रखा गया था कि उनकी जो आंखें थी, नेत्र थे, वो कमल जैसे, कमल के पत्ते पखड़ी होती है ऐसे, ठीक ऐसे आकार के थे, मैंने बहुत वो सुंदर थे, सुंदर मैंने सिमेट्रिक फेस वाले थे, तो जो जिसके सिमेट्रिसिटी होती है बॉडी की, उसके सभी अंग सिमेट्रिक होते हैं, आंख कान नाक होठ सब, हाथ पैर सब सिमेट्रिक होते हैं, अपने गुजराती में इन्हें नमणा कहिए छे, उजड़ा न हो पर नमणा हो, श्री कृष्ण का भी ऐसा था, वो श्याम थे लेकिन बहुत सुंदर थे। ये गोपांगनाएं दूसरे दूसरे तो उनके प्रति एकदम बहुत आकर्षित हो जाती थी, नमणा नमणा ही हो जैसे आपने गुजराती में इन्हें नमणा, हिंदी में वो शब्द नहीं, अंग्रेजी में इन्हें सिमेट्रिसिटी कहवा आवे, सिमेट्रिक बॉडी कहवा आवे, ऐसा होता है शरीर में, वो एक प्रकार की सुंदरता है, वो एक सुंदरता का पहलू होता है। तो रामचंद्र जी का आंख से उनका नाम पड़ा है पद्म कुमार, पद्म कमल जैसी जिसकी आंख थी, तो उनके सारा पुराण लिखा है, तो महापुरुषों के पुराण में कई बातें ऐसी आती हैं कि जो यथार्थ रूप से समझ में नहीं आए तो उल्टी समझ हो जाए। जैसे वो सीता जी का हरण हुआ तो उसके पीछे रोने लगे, लक्ष्मण जी का देहांत होता, उसका देह को 6 महीना कांधे पर रख करके घूमे फिरे, ये कोई इनकी कमजोरी दिखाने के लिए बातें नहीं लिखी है, लेकिन इनकी श्रद्धा ज्ञान की बलवान दशा दिखाने के लिए वो बात लिखी है कि इनके बाह्य प्रसंग में ऐसे ऐसे बलवान प्रसंग बने और चारित्र मोह के झंझावात हो जाए, ऐसे परिणाम चारित्र के दोष के बने, फिर भी इसकी श्रद्धा ज्ञान में कोई मचक नहीं आई, ऐसा दिखाने के लिए वो बात लिखी है। अगर वो सही रूप से समझ में नहीं आती है तो गड़बड़ हो जाती है। कृपालु जी ने वो बात का यहाँ एक निर्देश किया है, संकेत किया है कि पुराणों में जनक विदेही की बात आती है वो आलंबन लेने के लिए नहीं है, जैसे चक्रवर्ती की बात आती है कि भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानी थी, 6 खंड का राज्य था और उतना पौष्टिक खोराक खाते थे जिसमें सोना चांदी मोती हीरे की भस्म डाली जाते थे, तो वही खा सके और वही पचा सके, दूसरा कोई पहलवान भी खाए तो भी उसको टट्टी लग जाए, हजम नहीं होवे, निकल जाए बाहर। तो इसका मतलब क्या कि ऐसी परिस्थिति में भी उनकी श्रद्धा ऐसी कैसी रहती थी, आत्मश्रद्धा और आत्मज्ञान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो दिखाने के लिए वो बात है। वो पहलू समझ में नहीं आए तो लगेंगे कि चक्रवर्ती को तो उतना परिग्रह, हमारे पास तो इसका एक लाखवां भाग भी नहीं है, हमको क्या परिग्रह होने से क्या नुकसान है, हमारे पास उतना तो है ही नहीं, तो बहुत कम है। तो ऐसा आलम्बन लेने के लिए ये पुराण की बात समझ में नहीं लेनी, नहीं लेनी चाहिए, इस बात बताने के लिए कहते हैं कि हम कभी ऐसा आलम्बन लेते नहीं है। तो हम किसका आलम्बन लेते हैं, किसी जीन जैसे जन्म त्यागी भी इस संसार को छोड़ करके चल बसे ऐसे भय के हेतु रूप उपाधि योग की निवृत्ति यह पामर जीव करते करते समय निकाल देता है, समय व्यतीत करता है तो अश्रेय हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा, ऐसा भय जीव के उपयोग के प्रति वर्तता है, क्योंकि ऐसा ही कर्तव्य है। देखो किसका आलम्बन लिया कि तीन ज्ञान के तो धनी थे तीर्थंकर देव, और वो भी राजा महाराजा चक्रवर्ती भी थे, शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीन तो चक्रवर्ती थे, फिर भी जैसे नाक में से भारी हो जाए, अंदर में कफ आ जाए तो रख नहीं सके, जोर से निकाल दें वैसे छोड़ने में एक सेकंड में छोड़ दिया, ऐसे महात्माओं के चारित्र का हम आलम्बन लेते हैं, दूसरे का आलम्बन हम लेते नहीं है। ऐसा करके किस तरह से पौराणिक महात्माओं के प्रसंगों का आलम्बन लेना चाहिए वो अपने परिणामों से दर्शाया है, ये भी एक विशेष बात है, विशेष नहीं है, विशेष हो गया है, आगे का विषय इस बात पर थोड़ा विशेष है।